बताओ, क्या तुम मुझे मारते हुए देखना चाहते हो? अरुणिमा के इन शब्दों से आस्तिक एकदम स्तब्ध रह गया था। उसने अरुणिमा से तलाक मांगा, वरना उसे हमेशा के लिए खो देने की बात कही। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, एक बार फिर से अपने अंदर की अरुणिमा को बाहर लाने के लिए। वो आज़ाद होना चाहती है, और अगर आस्तिक उसे तलाक नहीं देगा तो वो खुद की जान ले लेगी। आस्तिक ने उसे एक साल का वक्त देने की बात कही, लेकिन तलाक देने से इनकार कर दिया। फिर दोनों करीब आते हैं। एक हफ्ते बाद अरुणिमा एयरपोर्ट पर थी और उसके साथ मीरा बैठी हुई थी। दोनों बच्चे सामने की तरफ खेल रहे थे और अरुणिमा और मीरा की नज़रें इमिग्रेशन काउंटर पर थीं, जहां पर देव इस समय अरुणिमा के डॉक्यूमेंट अपने हाथों में लेते हुए आ रहा था। उसने सारे डॉक्यूमेंट अरुणिमा को देते हुए कहा, अरुणिमा, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीज़ा और ये तुम्हारे बाकी के डॉक्यूमेंट। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। तभी अरुणिमा का फ़ोन बजने लगता है। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो मेल का नोटिफिकेशन था, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गए। उसने जैसे ही वो मेल ओपन किया, वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसके और आस्तिक के डिवोर्स का मेल आ चुका था। उन दोनों का डाइवोर्स कन्फर्म हो चुका था, मतलब कि अब वो मिसेज आस्तिक रायचंद नहीं है, अब वो सिर्फ अरुणिमा है। उसके पास उसका नाम है, उसकी पहचान है, और वो अपनी इस नई पहचान के साथ एक आज़ाद इंसान की तरह महसूस कर रही थी। अचानक से उसके अंदर की घुटन गायब हो गई थी। उसके दिल में जो जकड़न थी वो कहीं खो गई थी, और अरुणिमा इस वक्त खुद को एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। अरुणिमा आज भी उस दिन को याद करती है जब वो और आस्तिक आखिरी बार इंटीमेट हुए थे। अगली सुबह आस्तिक कब चला गया, अरुणिमा को पता ही नहीं चला। उसके पास कुछ था तो आस्तिक का एहसास और उसके जज्बात। वो अपने पूरे बदन पर आस्तिक की खुशबू महसूस कर सकती थी, लेकिन आस्तिक यहाँ पर नहीं था, वो यहाँ से जा चुका था। उसने जाने से पहले अरुणिमा को इतना प्यार किया था कि शायद इस प्यार का एहसास अरुणिमा को अब सारी ज़िंदगी रहेगा। उसने एक अंगड़ाई लेते हुए जब टेबल की तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। उसका फ़ोन था जो उसे अस्पताल में रह गया था। आस्तिक ने उसका फ़ोन टेबल पर रख दिया था और वो वहाँ से चला गया था। और अरुणिमा ने जैसे ही अपना फ़ोन उठाया, उसकी आंखें एकदम चौंक जाती हैं, क्योंकि वॉलपेपर पर आस्तिक और अरुणिमा की शादी की फ़ोटो लगी हुई थी और सामने एक स्टिकी नोट रखा हुआ था। और अरुणिमा ने जैसे ही वो नोट ओपन किया, उसमें आस्तिक ने कुछ लिखा हुआ था जो शायद अरुणिमा के लिए पढ़ना भी ज़रूरी था। आस्तिक ने अरुणिमा के लिए एक मैसेज दिया था, तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारा हसीन चेहरा अपनी यादों में लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। याद रखना, ये जुदाई सिर्फ तुम्हें वक्त देने के लिए है, और प्लीज़ मेरी जान, मेरा वक्त सिर्फ इतना लेना जितने में मेरी जान ना चली जाए। मेरे इंतज़ार की इंतहा मत होने देना। रहने के लिए मुझे सांसों की नहीं, तुम्हारी ज़रूरत है, और जब तक तुम मुझसे दूर हो, समझ लो मेरी मौत करीब है। अरुणिमा की आँखें कस के बंद हो जाती हैं, और एयरपोर्ट पर खड़ी अरुणिमा एक बार फिर से उसे सबको याद करके एक मीठे से दर्द के एहसास के साथ तड़प उठती है। आखिरकार उसकी और आस्तिक का डाइवोर्स हो चुका था, और इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। शायद इंडिया में रहकर वो आस्तिक से दूर रहकर भी दूर नहीं होगी, इसीलिए उसने दूसरे देश जाने का फैसला किया ताकि कुछ समय के लिए अपने आप को समय दे सके। और इन सब में देव ने उसकी मदद की। अरुणिमा के माता पिता को इस बारे में पता चला तो वो बहुत दंग हुए, लेकिन अरुणिमा से किसी ने कोई सवाल नहीं किया, खास करके उसके पिता ने। वो अरुणिमा की खुशी चाहते थे, और जितना अपनी बेटी को जानते थे, वो कभी कोई गलत फैसला नहीं लेगी, इसीलिए उन्होंने अरुणिमा के फैसले का सम्मान किया। अरुणिमा जाने से पहले किसी से मिलना नहीं चाहती थी और न ही किसी से कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए वो देव की मदद से वो ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। अरुणिमा मुस्कुराते हुए देव और मीरा को देखकर कहती है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। मीरा ने भी कहा, अरुणिमा, दोस्तों के बीच सॉरी और थैंक यू जैसी चीज़ नहीं होती है। लेकिन देव के चेहरे पर हल्की मायूसी थी। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी अरुणिमा, अगर मेरी हरकत का तुम्हें। अरुणिमा ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, नहीं देव, मुझे तुम्हारी किसी भी हरकत का कोई बुरा नहीं लगा। इतना कहूंगी कि जब तुमने आस्तिक को मारा था तो मुझे गुस्सा बहुत आया था, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहती हूँ। अगर तुमने उस वक्त वो कदम नहीं उठाया होता तो शायद मैं कभी ये कदम नहीं उठा पाती। थैंक्स मुझे समझने के लिए कि अगर मुझे सच में आस्तिक से दूर होना है तो इसके लिए आस्तिक का मुझसे दूर होना ज़रूरी है। मीरा एकदम से चौंक जाती है और देव को देखने लगती है। देव ने भी मीरा को देखा। उसकी आंखों का सवाल समझते हुए देव ने मुस्कुराते हुए हमेशा हिलाया। मीरा एकदम से अरुणिमा को देखते हुए कहती है, तो इसका मतलब तुम आस्तिक से अलग देव के कहने पर हुई हो। अरुणिमा ने तुरंत नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने देव के कहने पर कुछ भी नहीं किया है। मुझे आस्तिक से दूर जाना है, ये फैसला पूरी तरह से मीरा है। लेकिन देव ने मुझे समझाया कि आस्तिक कभी मुझे खुद से दूर नहीं जाने देगा, इसीलिए अगर मुझे आस्तिक से सच में अलग होना है तो इसके लिए सबसे पहले आस्तिक को मनाना होगा कि वो मुझे तलाश करना बंद करे।
अरुणिमा के कहने के बाद देव ने कहा, जब मुझे ये पता चला कि आस्तिक रायचंद असल में कौन है और वो क्या करता है तो मैं पहले बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि अरुणिमा उस टाइप की लड़की नहीं है जो इस तरीके की चीज़ों में शामिल हो। इसीलिए मुझे लगा शायद आस्तिक को थोड़ा सा डरा धमका दूंगा तो वो मान जाएगा, लेकिन ना तो वो डरने वाला है और न ही इतनी आसानी से मानने वाला। तुमने देखा नहीं मैंने उसे किस हद तक टॉर्चर किया था कि वो अरुणिमा को अपने साथ ले जाने का ख्याल छोड़ दे, लेकिन उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उसे अरुणिमा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगा। बात ये नहीं है कि अरुणिमा उसके साथ रहना चाहती है या नहीं, बात ये थी कि आस्तिक उसे खुद से दूर जाने नहीं देगा। इसीलिए अगर अरुणिमा को सच में आस्तिक से दूर जाना है तो इस बात के लिए सबसे पहले आस्तिक का राजी होना जरूरी था। जब आस्तिक को गेस्ट रूम में लाया गया और डॉक्टर इसका चेकअप करके चले गए, तब मैं अरुणिमा से मिलने उसके कमरे में गया था ताकि मैं उसे माफी मांग सकूं। लेकिन वहां पर अरुणिमा ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई और मैंने एक दोस्त के नाते उसकी मदद की। गेस्ट रूम। आस्तिक बेहोश था, उसके हाथों में आईवी ड्रॉप लगी हुई थी और अरुणिमा उसके बगल में बैठी हुई थी। वो आस्तिक को परेशान भरी नजरों से देख रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और देव अंदर आते हुए कहता है, अब कैसी तबीयत है? लेकिन अरुणिमा ने गुस्से में देव को देखते हुए कहा, जानकर खुशी नहीं होगी ना कि आस्तिक अब ठीक है? देव उसकी नाराजगी जानता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अरुणिमा गुस्से में खड़े होते हुए देव के पास आती है और कहती है, मैं अब बिल्कुल सही समझ रही हूँ, तुम आस्तिक को पसंद नहीं करते हो इसीलिए तुमने उसके साथ ये सब किया है। तुम्हें बता रही हूँ देव, अगर आस्तिक को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने कहा, अगर इतना ही प्यार करती हो तो उससे दूर क्यों जा रही हो? चली जाओ उसके पास वापस, वैसे भी वो पागल इंसान तुम्हारे बिना यहाँ से जाएगा नहीं। अरुणिमा के चेहरे पर मायूसी आ गई और उसने अपनी पलकें झुकाते हुए नामे सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं उसके पास गई तो उसके पास जो कुछ भी है वो सब उससे छिन जाएगा।
देव ने कहा, अरुणिमा, मुझे नहीं लगता उसे इन सब की परवाह है। पर अरुणिमा ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे तो परवाह है ना देव, मैं आस्तिक को इस तरीके से बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती हो, और ये पागल इंसान तुम्हारे अलावा कुछ और देखना नहीं चाहता है, तो अब क्या करोगी तुम? अरुणिमा का चेहरा मायूस हो गया था, उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। देव ने कुछ सोचते हुए अरुणिमा को देखा और उसके बाद उसने कहा, वैसे क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है कि तुम आस्तिक से दूर रहना चाहती हो? अरुणिमा ने उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिलाया तो देव तुरंत कहता है, देखो अरुणिमा, मैं नहीं जानता कि तुम दोनों की जिंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन जितना मैंने जाना है तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा सा सनकी है और वो तुम्हें अपने साथ लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम यहाँ से कहीं और भी चली जाओगी तो भी वो तुम्हें वहां से ढूंढ लेगा। इसलिए अगर तुम्हें सच में आस्तिक से अलग होना है तो सबसे पहले ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम उसके पास नहीं आना चाहती हो, और इसके लिए तुम्हें आस्तिक को डिवोर्स के लिए कन्विंस करना होगा। उसे इस बात का यकीन दिलाना होगा कि सच में तुम दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक जाती है। उसने तुरंत देव को देखते हुए कहा, लेकिन आस्तिक मुझे कभी डिवोर्स देने के लिए राजी नहीं होगा। देव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ, होगा तो नहीं, लेकिन तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा, जिद से, मनमानी से, अपना हक जमा कर, चाहे जैसे हो सके, और अगर ना माने तो तुम अपनी जान की भी धमकी दे सकती हो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो तुम्हारी जान को लेकर कभी भी रिस्क नहीं लगाएगा, लेकिन बात डिवोर्स की होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसे सिर्फ अलग रही तो भी तुम उसकी ही रहोगी। अब उसे कैसे मनाना है ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, तो ऑल द बेस्ट। इतना कहकर देव मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और अरुणिमा बस उसके शब्दों को ही समझती रह जाती है। एयरपोर्ट पर मीरा को सब पता चल गया था। वो अरुणिमा को गले लगाते हुए कहती है, अरुणिमा, मुझे यकीन है कि तुमने जो भी फैसला लिया होगा वो सही होगा, और मैं हमेशा तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। तुम्हें जब भी अपने दोस्तों की जरूरत पड़े तुम हमें याद कर सकती हो। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और देव और मीरा को देखकर थैंक यू कहा। उसके बाद वो आगे बढ़कर बच्चों से मिलती है। शौर्य और अरुणिमा को प्यार करके अरुणिमा देव को देखती है जो सच में एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी तरफ देख रहा था। आखिरकार अरुणिमा की फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो जाता है। वो आगे बढ़ जाती है अपनी नई जिंदगी के सफर पर, अपनी नई मंजिल के लिए, अपनी नई पहचान के लिए, अपनी आजादी के लिए। उसने पहला कदम बढ़ा दिया था, पर देखना ये था कि सच में ये कदम उसे उसकी मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि उसकी मंजिल और रास्ता सब आस्तिक से ही शुरू हुआ था। अरुणिमा की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। देव अपनी फैमिली को लेकर वापस गाड़ी में बैठ गया था और घर की तरफ जा रहा था, जब मीरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने उस रात मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था देव, क्या तुमने आस्तिक को सिर्फ इसलिए सजा दी थी क्योंकि वो अरुणिमा को तुमसे ज्यादा प्यार करता था? देव के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मीरा का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और गेयर लगाते हुए कहा, इसलिए तो तुम मेरी वाइफ से पहले मेरी दोस्त हो, तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से जो जानती हो।